मेरे बच्चे खतरे में हैं। वो मेरे बच्चों को मार डालेगी। मुझे अपने बच्चों को बचाना है। अरुणिमा, कहाँ हो तुम? अरुणिमा, मेरी बात सुन रही हो? हमारे बच्चों की जान खतरे में है अरुणिमा। अस्पताल का स्टाफ आस्तिक को खींचते हुए ले जा रहा था, लेकिन आस्तिक पूरे रास्ते यही चिल्ला रहा था। वो अस्पताल स्टाफ की पकड़ से खुद को आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो अरुणिमा और बच्चों को बचा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि दवाइयों की वजह से उसका शरीर पहले ही बहुत कमज़ोर हो गया था। आस्तिक उसके कमरे में लाया गया था, लेकिन वो बहुत असामान्य व्यवहार करने लगा। अस्पताल के स्टाफ ने बहुत मुश्किल से उसके पैरों में वापस बेड़ियां बांधी थी, पर आस्तिक उन बेड़ियों को जोर से खींचते हुए खुद के पैरों को घायल कर चुका था, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आस्तिक के पूरे पैर से खून निकलने लगा था, जिसे देखकर वो अस्पताल के स्टाफ हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक जल्दी से जाता है और डॉक्टर को बुलाकर लाता है। आस्तिक जोर जोर से चिल्लाती हुई कहता है, मुझे जाना होगा, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। वो डायन मेरे बच्चों को खा जाएगी। मुझे मेरे बच्चों को बचाना है। आस्तिक बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। अस्पताल के स्टाफ उसे पकड़कर वापस बेड पर धकेल देते हैं, लेकिन आस्तिक फिर खड़ा हो जाता और दरवाजे की तरफ जाने लगता था। डॉक्टर उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ने आस्तिक को इंजेक्शन दिया था कि वो शांत हो जाए, लेकिन आस्तिक शांत नहीं हो रहा था। वो हर चीज को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसके बच्चे हवा में हैं और वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अस्पताल स्टाफ कहता है, डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसे शॉक ट्रीटमेंट देना ही होगा। डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हैं और आस्तिक को शॉक ट्रीटमेंट रूम में लाने के लिए कहते हैं। आस्तिक को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। ये जरूरी था क्योंकि आस्तिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। डॉक्टर, यहाँ तक कि पूरा हॉस्पिटल भी उसे नहीं संभाल पा रहा था। आस्तिक रोते हुए डॉक्टर को देखकर कहता है, मुझे जाने दो, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। वो डायन मेरे बच्चों को मार डालेगी। मुझे जाने दो। अरुणिमा को मेरी जरूरत है। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। अरुणिमा, अरुणिमा कहाँ है? उसे बुलाओ। मुझे उससे बात करनी है। उसे बताना है कि हमारे बच्चों को खतरा है। अस्पताल कर्मचारी आस्तिक के सर पर कुछ तार जोड़ रहे थे। डॉक्टर आस्तिक के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं। वो आस्तिक का मुरझाया हुआ और हताशा से भरा हुआ चेहरा देखते हुए कहते हैं, ठीक है आस्तिक, हम आपको छोड़ देंगे। पहले आप मुझे बताओ कि आपको पता है अरुणिमा कौन है और आपके बच्चे कहाँ पर हैं? आप हमें बताओ, हम आपको अरुणिमा के पास ले जाएंगे और आपके बच्चों के पास भी ले जाएंगे। अरुणिमा नाम है उसका। अरुणिमा, वो अरुणिमा है। उसके पास मेरे बच्चे हैं और वो अरुणिमा मेरी कठपुतली है। मुझे अरुणिमा के पास जाना है। उसके पास मेरे बच्चे हैं। मेरा आकाश है, मेरा आनंद है। आस्तिक आगे रोते हुए कहता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे अरुणिमा के पास जाना है। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। वो डायन मेरे बच्चों को खा जाएगी। मुझे जाने दीजिए ना। डॉक्टर को लगा शायद आस्तिक मानसिक तौर पर ज्यादा ही बीमार है, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ के इशारे से मशीन को चालू करने के लिए कहा। अगले ही पल आस्तिक को शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू हो गया। आस्तिक जोरों से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, खुद को रिहा करने की भीख मांगने लगा, लेकिन उसे बिजली के झटके देने बंद नहीं हुए। इतने दर्द और तड़प में भी आस्तिक सिर्फ अरुणिमा और अपने बच्चों को ही याद कर रहा था। आखिरकार बिजली के झटकों की वजह से आस्तिक बेहोश होने लगा और बेहोशी में जाते जाते उसे अपने आसपास सिर्फ शारदा देवी की ही छवि नजर आने लगी, जो कह रही थी, मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगी, मैं उन्हें जान से मार डालूंगी, तेरी अरुणिमा को जान से मार डालूंगी। उन्हें मत मारो, वो बहुत छोटे हैं, उन्हें मत मारो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी अरुणिमा को छोड़ दो। आस्तिक यही बड़बड़ाता हुआ बेहोश हो जाता है। अरुणिमा की डिलीवरी को लगभग एक हफ्ता हो चुका था, इसीलिए उसे छुट्टी दे दी गई थी। अरुणिमा वापस घर आ गई थी। वैसे तो सक्षम उसे फार्म हाउस में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन अरुणिमा ने अपने हाथ जोड़ते हुए सक्षम से कहा कि उनके बीच जो एक समझौते का रिश्ता है, उन्हें ऐसे ही रहने दे, इस रिश्ते को किसी के बोझ तले ना दबाएं। अरुणिमा वापस अपने उस एक कमरे के मकान में आ गई थी। घर भले ही छोटा था, लेकिन अरुणिमा यहाँ खुश थी। उसके दोनों बच्चे अब उसके साथ थे। अरुणिमा ने आकाश को कपड़े पहनाकर बेड पर लिटा रखा था और अब वो अनंत को कपड़े पहना रही थी। आकाश अपने हाथ बार बार ऊपर करके अरुणिमा की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा करता देख अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्योंकि अनंत सो रहा था, तो अरुणिमा आकाश के पास जाती है और उसके हाथों को अपने गालों पर महसूस करते हुए कहती है, क्या हुआ बेटू, आप मम्मा को प्यार करना चाहते हो? आप मम्मा के गालों को छूना चाहते हो? आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करती है। अरुणिमा की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान थी और वो अपने बिना दांत वाले जबड़े को दिखाते हुए हंस रहा था। अरुणिमा ने आगे बढ़कर आकाश के माथे को चूम लिया और उसके छोटे छोटे हाथों को अपने गालों पर महसूस करने लगी। एक चीज पर अरुणिमा बहुत अच्छी तरह से जान गई थी, जब से उसने इन दोनों बच्चों को जन्म दिया था तब से लेकर आज तक उसने इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहचाना था कि इन दोनों की आंखें आस्तिक के ऊपर गई हुई हैं। इन दोनों की ही आंखें भूरी हैं। अरुणिमा की आंखें काली हैं, लेकिन आस्तिक की आंखें भूरी हैं।
अरुणिमा जितना ही इस बात से मुंह मोड़ ले, लेकिन वो इसे झुठला नहीं सकती है कि ये बच्चे आस्तिक के ही हैं, और अगर इनका कोई अंश आस्तिक के ऊपर जाता है तो अरुणिमा को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आकाश अरुणिमा को देखकर मुस्कुरा रहा था। अरुणिमा ने भी आकाश के छोटे से हाथों को फैलाया और उसे चूम लिया। तभी अरुणिमा को एहसास होता है कि आकाश का चेहरा रोने जैसा हो गया है। वो देखती है तो आकाश ने सूसू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे। अरुणिमा हंसने लगती है। वो जल्दी से आकाश के छोटे से पैंट को निकालती है और उसे साइड टेबल पर रख देती है। वो जैसे ही बेड से खड़ी होती है, वैसे ही अनंत भी उठ जाता है और रोने लगता है। अनंत को रोता हुआ देखकर आकाश भी रोने लगता है। वो दोनों रो रहे थे, लेकिन अरुणिमा जल्दी से अलमारी की तरफ जाती है और वहां से आकाश के लिए एक सूखी हुई पैंट लाने लगती है। तभी अरुणिमा को एहसास होता है कि जैसे उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ है, क्योंकि आकाश और अनंत का रोना अचानक से तेज हो गया था और उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।